आज है 20 अगस्त दिन गुरुवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक से पहले कश्मीर में अलगाववादियों को पहले गिरफ्तार फिर रिहा किया गया।
हुर्रियत का तो मकसद यही है कि इन टॉक्स में जाने का या इस रिसेप्शन में जाने का कि हम तो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो बातचीत का प्रोसेस है, जो डायलॉग का प्रोसेस है, वो आगे चले।
तो पाकिस्तान ने कहा ऐसी बैठकों से पहले कश्मीर के नेताओं से बात करने का कोई अर्थ ना निकाले भारत। राजस्थान में शुरू हुई पहली सार्वजनिक निजी वितरण प्रणाली।
अब शेल्फ स्पेस बियानी को दिया जाएगा एक्सपीरियंस दुकान में, जहां वो किसी के भी प्रोडक्ट वो अपना मार्केटिंग करेंगे और बेचेंगे, चाहे वो साबुन हो चाहे तेल हो।
लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की बैठक से पहले कश्मीरी नेताओं से बातचीत सामान्य सी बात है, इसलिए इस मुलाकात का कोई अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। दोनों देशों के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक 23 और 24 अगस्त को दिल्ली में हो रही है। इससे पहले भारत प्रशासित कश्मीर में हुर्रियत नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिर ज्यादा दर को रिहा कर दिया गया था। उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा पर गोलीबारी हुई है। उत्तर कोरिया ने पहले एक रॉकेट दागा जिससे किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घंटे भर बाद दक्षिण कोरिया ने दर्जनों शेल दागे। दक्षिण कोरिया ने लाउडस्पीकर के जरिए फिर से उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट विरोधी अभियान प्रसारित करने का फैसला किया, जिससे उत्तर कोरिया नाराज है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने कहा है कि प्योंगयांग की तरफ से अभियान बंद करने के लिए 48 घंटे दिए गए थे। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जियोन हा क्यू ने कहा, हमारी सेना ने उत्तर कोरिया की सेना की तरफ से उकसाने वाली गतिविधि देखी, जो 20 अगस्त को स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 3:53 और 4:12 पर हुई। मिलिट्री डिमार्केशन लाइन के पास ये फायरिंग हुई। हमने जवाब में चेतावनी देने के लिए दर्जन भर गोलियां चलाई। हमने सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी से गोलीबारी की। फिर हमारी सेना ने उच्चतम दर्जे की सुरक्षा का इंतजाम किया। हमारी सेना पूरी तरह सतर्क है और उत्तर कोरिया की सेना की गतिविधियों पर नजर रखे हुए। ये थे दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जियोन हा क्यू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के इरावन मंदिर के पास हुए धमाके के मामले में दो लोग पुलिस के पास पहुंच गए हैं। इन लोगों का कहना है कि इन्हें गलत तरीके से संदिग्धों की तरह पहचाना गया है। ये दोनों सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं। इनका कहना है कि ये दोनों टूर गाइड हैं। वहीं इससे पहले थाईलैंड की सरकार ने कहा है कि सोमवार को बैंकॉक के मंदिर के पास हुए धमाके में किसी अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथी संगठन का हाथ नहीं लगता। यमन के अदन शहर में एक बम धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय राज्यपाल के दफ्तर पर यह हमला किया गया, हालांकि राज्यपाल सुरक्षित बच गए हैं। अदन में पिछले कई महीनों से हूथी विद्रोहियों और सरकार समर्थित लड़ाकों के बीच लड़ाई जारी है। सऊदी अरब समर्थित यमन सरकार के सुरक्षा बलों ने विद्रोहियों को पिछले महीने यहां से खदेड़ दिया था। वहीं दूसरी घटना सामने आई है, जिसमें मंगलवार को सऊदी अरब के नेतृत्व वाली सेना के हवाई हमलों में 17 नागरिकों की मौत हो गई। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक होने से पहले आज भारत प्रशासित कश्मीर में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। कश्मीर में पहले अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया और फिर करीब 2 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया। यहां कट्टरपंथी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी को पहले से ही नज़रबंद रखा गया है। वहीं दूसरे सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तान ने बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक से पहले कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान के NSA सरताज अजीज से बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। वहीं ये समझा जा रहा है कि अगर अलगाववादियों को पाकिस्तानी दूतावास जाने दिया जाता है तो राज्य में बीजेपी गठबंधन वाली सरकार में हलचल मच सकती है। पूरा ब्यौरा दे रहे हैं श्रीनगर से रियाज मसरूर।
अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों घुटों के नेताओं सईद अली गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक के घरों के बाहर आज सुबह पुलिस और सुरक्षा बलों की भारी संख्या को तैनात किया गया। बाद में लिबरेशन फ्रंट के नेता यासीन मलिक को भी गिरफ्तार किया गया। ये नेता पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज के साथ मुलाकात के लिए दिल्ली जाने वाले थे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार AK डोवाल के साथ मिस्टर अजीज की रविवार को अहम मीटिंग हो रही है और इसी मीटिंग से पहले पाकिस्तान ने कश्मीरी अलगाववादियों से सलाह करने का फैसला किया है। आज जब अलगाववादियों को गिरफ्तार और बाद में रिहा किया गया तो कई वर्गों ने बातचीत की गंभीरता पर सवाल उठाया। मीरवाइज उमर फारूक ने तो यहां तक कहा कि भारत अपनी विदेश नीति को लेकर कंफ्यूज है।
पहली बात तो यह है कि हमें मालूम भी नहीं है कि सुबह हमें बंद क्यों रखा गया, न किसी ने कोई रीजन दिया, कोई वजह बताई और ना ही ये पता चला कि छोड़ा क्यों। मैं समझता हूं कि शायद कोई कंफ्यूजन है हुकूमत के हवाले से, जबकि हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि आए दिन हमें बंद रखा जाता है। हुर्रियत का तो मकसद यही है कि इन टॉक्स में जाने का या इस रिसेप्शन में जाने का कि हम तो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो बातचीत का प्रोसेस है, जो डायलॉग का प्रोसेस है, वो आगे चले। हम तो सपोर्ट करते हैं उसको, हम तो अपना सहयोग देना चाहते हैं सारे मामले में।
गौरतलब है कश्मीर में इस वक्त BJP और PDP की गठबंधन सरकार है। PDP के प्रवक्ता रफी मीर ने बताया कि अलगाववादियों को गिरफ्तार करने के बारे में इन पर मोदी सरकार का कोई दबाव नहीं था।
फेसबुक पर इतला मिली लोगों को कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या दिल्ली ने कोई प्रेशर बना के रियासत जम्मू कश्मीर पर हमारी सरकार पर यह डाला है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन मैं आपको विद सर्टेनिटी कहता हूँ उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। वो अपने घरों में इस वक्त भी हैं और अगर कोई प्रेशर होता वो 2 घंटे या 35 मिनट प्रेशर दूर होने वाला था नहीं।
इस बीच BJP ने भी साफ किया है कि सरताज अजीज और AK डोवाल के बीच जो बातचीत होगी इसमें कश्मीर का मुद्दा नहीं छेड़ा जाएगा। पार्टी के प्रवक्ता खालिद जहांगीर ने बताया कि सिर्फ आतंकवाद पर बात होगी।
ये एक ब्रॉडर टॉक्स है, ये अबाउट टेररिज्म है, टेररिज्म फॉर्म्स है और इसमें जम्मू कश्मीर का कोई जिक्र नहीं है, जैसा नहीं है, जहां की एक सरकार चल रही है।
पाकिस्तानी दूतावास में अलगाववादियों की मुलाकात पिछले वर्ष भी विवादग्रस्त हो गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एतराज किया और पाकिस्तान के साथ बातचीत को निलंबित कर दिया गया। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
उधर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की बैठक से पहले कश्मीरी नेताओं से बातचीत सामान्य सी बात है, इसीलिए इस मुलाकात का कोई अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता काजी खलीलुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि भारत कश्मीरी नेताओं को पाकिस्तानी सुरक्षा सलाहकार और दूसरे अधिकारियों से मिलने की इजाजत देगा। खलीलुल्लाह ने कहा कि दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत में कश्मीर समेत सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। मैंने इस बारे में जानकारी के लिए इस्लामाबाद फोन कर BBC संवाददाता आसिफ फारूकी से जानकारी मांगी।
फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन काजी खलीलुल्लाह का ये कहना था कि इंडिया को एलिगेशंस लगाने के बजाय बातचीत पर जोर देना चाहिए और जिस तरह से वो कश्मीरी लीडर्स को हाउस अरेस्ट पे रखा गया है उस पे से उनको निकालना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह की ट्रेडिशन बन गई है कि पाकिस्तानी जब भी इंडियन साइड से बात करने लगते हैं तो उससे पहले वो कश्मीरी लीडरशिप से ज़रूर बातचीत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ख्याल में कश्मीरी जो हैं वो इस डिस्प्यूट का बहुत इंटेग्रल पार्ट हैं और उनकी मर्जी के बगैर, उनकी ख्वाहिश के बगैर पाकिस्तान जो है या इंडिया इस मसले को हल नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो उनसे मुशावरत करनी बहुत ज़रूरी है और उन्होंने इसलिए कहा कि इंडियन लीडरशिप को चाहिए कि वो हुर्रियत लीडर्स को रिहा करे ताकि वो 23 तारीख को पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सरताज अजीज से नई दिल्ली में मिल सकें।
जी आसिफ साहब, तो आज फॉरेन ऑफिस ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहीं क्या पता चल पाया है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक होगी तो पाकिस्तान किन किन मुद्दों को इस बैठक में उठाएगा?
देखिए, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जिस तरह से उन्होंने इसको टोन करने की कोशिश की है कश्मीरी लीडर्स की रिहाई को, उससे ये बिल्कुल वाज़े मैसेज पाकिस्तान की तरफ से गया है कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर ज़रूर बात करना चाहेगा इस मीटिंग में। फॉरेन ऑफिस का ये बिल्कुल क्लियरली कहना था कि जब भी इंडिया से पाकिस्तान की किसी भी लेवल की बातचीत होती है तो पाकिस्तानी लीडरशिप जो है वो ज़रूर कंसल्ट करते हैं कश्मीरी लीडरशिप को। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर ज़रूर बात करना चाहता है, लेकिन उसके अलावा ऐसे भी सिग्नल पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स दे रहे हैं कि जो टेररिज्म का मामला है उस पर भी बात होगी और उसमें आपको याद है कि गुजरी कल पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर है उन्होंने इंडिया पे आरोप लगाया था कि वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म में इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान जो है वो ये मैसेज इंडिया को देना चाह रहा है कि अगर आप पाकिस्तान पे ये इल्जाम लगाएंगे इस टॉक्स के दरमियान में कि पाकिस्तान इंडिया में या कश्मीर में टेररिज्म कर रहा है, तो पाकिस्तान भी इसके लिए तैयार होकर जाएगा कि वो इंडिया पे ये इल्जाम लगाएगा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का टेररिज्म कर रहा है। तो कश्मीर और सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी और टेररिज्म और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो शेलिंग हो रही है, ये तीन मुद्दे जो है ये तो लाजमन ऐसा लगता है कि इस बातचीत में जो है वो उठाएंगे।
जी, हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उससे दोनों देशों के रिश्तों के बीच एक तलखी नजर आ रही है, तो क्या इसका असर बातचीत पर पड़ सकता है?
जी, ऐसा बिल्कुल महसूस हो रहा है कि तलखी आई है, और उसकी वजह जो समझ में आती है वो यही है शायद कि दोनों मुल्क अपने आप को वीकन नहीं देखना चाहते, कि वो एक कमजोर फरीक के तौर पे इस इन टॉक्स में नहीं जाना चाहते, वो अपर हैंड लेके इन टॉक्स में जाना चाहते हैं। दूसरा ये कि वो ये भी नहीं चाहते कि दोनों देशों के जो लोग हैं उनकी उम्मीद जो है वो ज्यादा बढ़ जाए, उसको भी वो एक लिमिट में रखना चाहते हैं कि अगर टॉक से पहले बहुत गुड़ी गुड़ी बातें हों तो शायद होप्स जो है वो हाई हो जाएं। और इस तरह की टॉक्स, अब आपको पता है आजकल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कई सालों से चल रही है, उनका रिजल्ट कोई नहीं होता, तो शायद दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि वो होप्स को ज्यादा हाई नहीं करना चाहते और ताकि मायूसी जो है वो ना हो अगर कुछ ज्यादा इस टॉक्स में से नहीं भी निकलता तो भी।
तो NSA की बैठक के दौरान चरमपंथ और कश्मीर का मुद्दा भी उठाएगा पाकिस्तान। ये थे इस्लामाबाद से BBC संवाददाता आसिफ फारूकी। राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे सत्तारूढ़ BJP और प्रतिपक्षी कांग्रेस को कहीं गम तो कहीं खुशी का पैगाम दे रहे हैं। राज्य की 129 नगर पालिका संस्थाओं में से 67 पर BJP ने जीत दर्ज कराई है। BJP ने इसे बड़ी कामयाबी बताया है। उधर कांग्रेस ये कहकर खुशी मना रही है कि लोकसभा चुनाव में BJP और कांग्रेस के बीच मतदान प्रतिशत का फासला सिकुड़ गया है। मैंने जयपुर में मौजूद नारायण बारेट से इन नतीजों पर बात की।
राजस्थान में 129 स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, उसमें से 63 पर अब तक जो रुझान मिले हैं उसके मुताबिक BJP जीत की ओर अग्रसर हो रही है और कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो 30 से ज्यादा सीटों पर कामयाब हुई है। 18 सीटें ऐसी हैं जहां निर्दलीय कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। 11 सीटों पर कांग्रेस और BJP दोनों बराबर है, मतदाता ने किसी के पक्ष में फैसला नहीं दिया है। और वार्डों की संख्या के हिसाब से 800 से ज्यादा वार्डों पे BJP कामयाब हुई है और 750 के आसपास कांग्रेस। ऐसे ही 450 वार्ड हैं जिन पे निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी है।
जी नारायण जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि झालावाड़, ढोलपुर और बारा ऐसे इलाके हैं जो BJP का गढ़ माना जाता है और यहाँ से वसुंधरा राजे के बेटे झालावाड़ से जीत कर भी आए हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ BJP हार गई?
इन चुनाव परिणामों ने BJP और कांग्रेस दोनों को कहीं गम कहीं खुशी का संदेश दिया है। BJP जहाँ इस बात को लेकर खुश है कि उसकी ज्यादा म्युनिसिपैलिटीज में कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन इस बात को लेकर उसकी जीत है उसके उसमें खलल पड़ गया है कि झालावाड़ जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का खुद का चुनाव क्षेत्र है वहाँ BJP शिकस्त हुई, कांग्रेस जीती है। और झालावाड़ और उसका हिस्सा बारा भी है जो सांसद है दुष्यंत सिंह, वसुंधरा राजे जी के पुत्र हैं, उनका इलाका है, वहां पर आजे हुई है। धौलपुर भी महत्वपूर्ण है कि वो उनका गृह जिला है, वहां भी BJP को कोई कामयाबी नहीं मिली है। तो BJP के लिए जहां इस बात के लिए जश्न है कि उसने ज्यादा जीता है, लेकिन प्रमुख निर्णायक स्थानों पे उसकी करारी हार हुई है। तो इसको लेकर अब BJP ये रेखांकित करने का प्रयास कर रही है कि ऐसा परिणाम इन इलाकों में क्यों आया जहां उनकी पारंपरिक तौर पे पकड़ बनी हुई थी।
क्या इसका कारण राजनीतिक विवाद माना जाए जिसमें वसुंधरा राजे एक तरह से फंसी हुई हैं या बहुत सारे वादे किए गए हैं जो पूरे नहीं किए हैं, क्या कारण क्या देख रहे हैं आप?
पहले से इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि झालावाड़ इलाके में भारतीय जनता पार्टी का कामकाज ठीक नहीं है, इस तरह की कुछ बातें पहले दिखाई दी थी। चुनाव के दौरान ही स्थानीय लोगों ने BJP छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन किया था। बेरोजगारी मुद्दा है और स्थानीय मतदाताओं का ये भी कहना है कि विकास पे पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। धौलपुर है, वहां पे पहले भी विधानसभा चुनाव में BJP को कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। जो प्रेक्षक है वे कहते हैं कि ये मिला जुला चुनाव परिणाम कारणों को लेकर है। एक, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, दूसरा कोई विकास के काम को बहुत ज्यादा गति नहीं मिल पाई है और मुख्यमंत्री काफी और राज्य के विकास में व्यस्त रही, इसलिए उनका पूरा ध्यान और फोकस झालावाड़ पे नहीं रह पाया है। कुछ स्थानीय कार्यकर्ता वो उतने उत्साहित नहीं चुनाव में थे
जितने पहले विधानसभा और लोकसभा में थे, तो ऐसा प्रेक्षक मान रहे हैं।
तो स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली 67 सीटों पर जीत, ये थे जयपुर से नारायण बारेट। वहीं राजस्थान में अब मल्टी ब्रांड उपभोक्ता वस्तुएं भी उचित मूल्य की दुकानों पर मिलेगी। अन्नपूर्णा भंडार योजना के नाम से शुरू की गई ये देश की पहली आधुनिक सार्वजनिक निजी वितरण प्रणाली बताई जा रही है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की उपस्थिति में राजस्थान सरकार के उपक्रम राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम और फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइज लिमिटेड के बीच ये करार किया गया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस मौके पर कहा कि अन्नपूर्णा भंडार राजस्थान के गांवों के लिए ग्रामीण मॉल की तरह काम करेंगे। योजना के पहले चरण में प्रदेश की 5,000 उचित मूल्यों की दुकानों में इसे लागू किया जाएगा। मैंने राजस्थान में राइट टू फूड कैंपेन की राष्ट्रीय संयोजक कविता श्रीवास्तव से इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बात की।
इस दुकान में वो कुछ भी किसी और के आइटम नहीं बेच सकता है, बट दीज टू जो सरकार ने 3 सब्सिडी करके दिए हैं और जो मार्केटिंग कॉर्पोरेशन देता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बेच सकता था। अब शेल्फ स्पेस बियानी को दिया जाएगा पीडीएस दुकान में, जहां वो किसी के भी प्रोडक्ट्स वो अपना मार्केटिंग करेंगे और बेचेंगे, चाहे वो साबुन हो, चाहे तेल हो, चाहे सैनिटरी नैपकिन हो, चाहे कोई और प्रोविजन हो, वो बेचेंगे। तो जो पीएस दुकान है, फेयर प्राइस शॉप, जो एक डीलर की होती है, उस दुकान में ये आइटम्स रखने की जगह दी जाएगी। अब बयानी कौन है जिनको ये दिया गया है? इनका बिग बाजार नाम के सुपरमार्केट्स चलते हैं और वो ये सारे सामान खरीदते हैं। तो 25,000 में से 5,000 दुकानों को बयानी अपनी अपना सामान रखने के लिए उनको स्पेस मिलेगी।
जी, और ये जयपुर और उदयपुर में जो है एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह से चल भी रहा है अभी, और कहा जा रहा है कि उचित दामों पर दिया जाएगा और ग्रामीण इलाकों तक भी इनकी पहुंच।
नहीं, ये तो एफपीएस जो दुकानें होंगी वो ग्रामीण इलाकों में ही होंगी।
तो आपको लगता है कि इससे कितना फायदा होगा लोगों को?
अब जो इसमें दो सवाल है। डेफिनेटली जब आप बिग बाजार बयानी जैसे ग्रुप को स्पेस दे रहे हैं, हालांकि सरकार का कहना है, हमने तो अंबानी को अप्रोच किया, हमने हर रिटेलर को अप्रोच किया,
जी, इसमें हुआ है।
सबने मना कर दिया। आई मीन इट सीम्स पर्सनल फोन कॉल्स भी हुए थे, सिर्फ बयानी ने टेंडर किया, तो जो टेंडर का 1 करोड़ जो भी सिक्योरिटी वो सब उन्होंने दिया है, 1% कमीशन वो देंगे टू स्ट्रेंथन पीडीएस शॉप्स, ये देंगे। लेकिन जो मैंने कहा, सवाल हमारे सामने दो हैं। एक तो है कि कोई किसी ने प्रोडक्ट रखे दुकान पे, तो अब वो चाहे खरीदे या ना खरीदे, पड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी चीज भी हो सकती है कि तुम नहीं खरीदोगे ये लाइफ बॉय साबुन, तो मैं तुम्हें तुम्हारा गेहूं नहीं दूंगा। बयानी की प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ये बार्गेनिंग की जा सकती है, जैसे अभी शिकायतें आ रही हैं कि जो राजस्थान स्टेट फूड मार्केटिंग कॉरपोरेशन है, जिस जो 5 आइटम रखता है इस वक्त, नमक, चाय, स्पाइसेस वगैरह, अभी भी लोग कहते हैं कि हमें कहते हैं कि आप जब तक चाय का पैकेट नहीं उठाओगे हम आपको आपका गेहूं नहीं देंगे। हालांकि सरकार
तो
अभी पल्ला
झाड़ेगी
और कहेगी भी हम तो मैंडेटरी कर ही नहीं रहे हैं।
तो ये तो उपभोक्ता के साथ एक तरह से जबरदस्ती हुई कि
क्या एफपीएस दुकान में क्या खेल खेला जाएगा। अंत में जो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर एक हंगर स्टार्वेशन के में ना घुसे, इसलिए एक सस्ते अनाज की व्यवस्था है। अब वो सस्ता अनाज, हम लोगों का एक स्टैंड रहा राइट टू फूड कैंपेन का, कि सस्ता अनाज किसी भी सूरत से कंडीशनल नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेके। ना कूपन करो आप, ना आधार के साथ करो, ना आप कोई और आइटम के साथ जोड़ो। तो अब जो हमारे सामने सवाल है कि क्या इसको मैंडेटरी बनाया जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, जो बयानी है वो डेफिनेटली जो भी कंपनी पेनिट्रेट कर रही है उसके प्रॉफिट कमाएगी वो, तो ये सवाल हमारे सामने है।
हाँ, क्योंकि आप राइट टू फूड कैंपेन से जुड़ी हुई हैं, तो आप क्या अगला कदम उठाने वाली हैं?
अभी हमारी एक बैठक हुई थी सरकार से, हम समझने गए थे। हम तुरंत एक और बड़ी बैठक बुला रहे हैं अपने सारे कैंपेन के लोगों की राजस्थान में, और फिर हमारा कदम यही रहेगा जो बनेगा। पीडीएस डीलर्स से भी हम लोग का रेगुलर डायलॉग रहता है, तो हमारा जो कंज्यूमर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, माने आम जन से हमारा संवाद होगा और डीलर से संवाद होगा। एंड डेफिनेटली हम लोग क्लियर हैं, ये तो दिस इज अ नॉन निगोशियबल कि किसी भी रूप में आप व्यक्ति का राशन कंडीशनल नहीं करेंगे, वो चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष।
ये थी राजस्थान में राइट टू फूड कैंपेन की नेशनल कन्वेनर कविता श्रीवास्तव।
बीबीसी इंडिया बोल।
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला दिया कि जनप्रतिनिधियों, नौकरशाहों और अन्य उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य है। सवाल यह है कि आखिरकार सरकारी स्कूलों में ऐसी क्या कमी है जो उच्च पदों पर बैठे लोग अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ाना चाहते। सरकारी स्कूलों में बच्चों को न पढ़ाने के पीछे उसकी गुणवत्ता वजह है या फिर स्टेटस सिंबल का सवाल है। इस शनिवार बीबीसी इंडिया बोल में यही है चर्चा का विषय। शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब समय है आपकी चिट्ठियों का।
आपकी राय के साथ हाजिर हूं मैं मोहनलाल शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं इंदु पांडे। इंदु पांडे जी, आज मैं देख रहा हूं काफी सारी चिट्ठियां आप लेके बैठी हुई हैं।
जी हाँ, बहुत सारी चिट्ठियां देख के बहुत अच्छा भी लगता है। हमारे पास एक चिट्ठी आई है जिसे लिखा है अशोक कुमार ठाकुर ने, माली टोल अदलपुर दरभंगा से। कहते हैं कि भाई जो कहानी आपने सुनाई जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी की विवेचना में, वो बहुत अच्छी लगी। और अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम का 70 वर्षीय गांठ पर जो आपने जानकारी दी, बहुत पसंद आई।
बहुत बहुत शुक्रिया चिट्ठी लिखने के लिए। और चूंकि हाथ से लिखी चिट्ठी है, इसलिए हालांकि इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे याद है कि ये विवेचना मैंने ही की थी अशोक भाई, और आपको ये विवेचना पसंद आई, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है।
और ये हैं एहसान असगर, मलकापुर जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से। कहते हैं कि पिछले दिनों आपके प्रसारण में तीन बातें ऐसी हुई जो ये सोच रहे थे और हो गई,
मतलब ये सिर्फ चाहते थे और ऐसा हो गया, वाह क्या बात है।
पहली बात, शोले के रिलीज के 40 साल हो रहे थे, मुझे लगा कि इस पर कुछ होना चाहिए,
वंदना ने विवेचना कर दी
जी। दूसरी बात, राधे माँ और उन जैसे सो गॉड धर्म गुरुओं पर मोहनलाल जी ने इंडिया बोल प्रस्तुत किया,
चलिए ये भी हो गया।
तीसरी बात, मैं सोच रहा था कि इंडिया बोल के अंश घटना चक्र में शामिल नहीं होने चाहिए, और वैसे ही हुआ।
एहसान भाई, हमारी कोशिश ये होती है कि जब हम शनिवार को इंडिया बोल कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, कभी कभी हम उसके संपादित अंश आपको सुनाते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि ज़्यादातर हम पूरा का पूरा नया प्रोग्राम आपके लिए पेश करें, और ऐसा पिछले कई बार से हम लगातार कर रहे हैं, इसलिए आपको ये हमारा परिवर्तन अच्छा लग रहा है, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है।
और हमारे पास ये चिट्ठी आई है राजस्थान फलसुंड से, रामचंद्र सुथार। लिखते हैं कि इंदु पांडे की शतरंज पर आधारित विशेष रिपोर्ट अच्छी लगी,
वाह वाह क्या
शुक्रिया
बात।
इसके लिए तो हम कहेंगे। और आगे लिखा है कि उजियारा की छठी कड़ी अच्छी लगी, परंतु इंडिया बोल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस बार का इंडिया बोल
अच्छा लगा इन्हें, इससे पहले जो चिट्ठी थी उनको अच्छा लगा था
जी। कहते हैं क्योंकि बिल्कुल एक तरफा रहा, एक पक्ष को सामने लाकर न जाने आप क्या जताना चाह रहे थे, और आजकल इंडिया बोल कार्यक्रम का कोई औचित्य ही नहीं, आप इसे बंद कर दें।
रामचंद्र भाई, देखिए जहां तक आप ये कह रहे हैं कि इंडिया बोल कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि अभी भी इस कार्यक्रम का औचित्य है। और जहां तक इस कार्यक्रम की बात है, ये कार्यक्रम मूलतः आप श्रोताओं का कार्यक्रम है, जिसमें कि हम किसी भी एक समसामयिक विषय को उठाते हैं और समसामयिक विषय पर चर्चा करते हैं। उस कार्यक्रम का मकसद ये भी है कि आप क्या सोचते हैं उस विषय के बारे में, आप अपनी राय रखें। अगर कार्यक्रम में ज़्यादातर लोग एक ही तरह की बातें कह रहे हैं, तो वो हो सकता है कि आपको एक तरफा सुनाई दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब भी हम कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तो कोशिश करते हैं कि दोनों पक्षों को उसमें शामिल करें, तभी वो सही संतुलन हम बना पाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक पक्ष की बातें ज़्यादातर आती हैं और वो पक्ष आपकी ओर से आ रहा है, यानी कि तमाम श्रोता जो शामिल हो रहे हैं वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो श्रोताओं से जुड़ने का तो एक कार्यक्रम हमारा ये आपकी राय है, और दूसरा जो कार्यक्रम है सीधा संवाद, वो ये बीबीसी इंडिया बोल है
जी। और ये हैं संदीप पासवान, लिखते हैं कि भाई जो बीबीसी की वेबसाइट है उस पर कई बार न्यूज़ नहीं चल रही होती है जब वो उसको क्लिक करते हैं, तो प्लीज़ आप उसे जल्दी ठीक करिए।
ये इस तरह की कई शिकायतें हमारे पास और भी आई हैं, और इसे हम अपनी टेक्निकल जो टीम है उसको उसके पास भेज देते हैं।
रेहान फजल साहब, क्या आप विवेचना के नाम पर आजीवन इतिहास ही पढ़ाते रहेंगे आप हमें? ये हैं राजहर लातेहार झारखंड से गौतम पाठक।
गौतम जी, क्या बात है भाई, आपको लगता है इतिहास की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं?
हाँ, क्योंकि ये कहते हैं कि आज से 20, 50, 100, 200 वर्षों के बाद पृथ्वी का आर्थिक, भौगोलिक, सामरिक और जैविक पर्यावरणीय स्वरूप अथवा समीकरण कैसा होने की संभावना है, हमें भविष्य की विवेचना सुननी है, इसलिए कृपया भविष्यवाणी अथवा पूर्वानुमान नामक श्रृंखला प्रारंभ करिए। ये अद्भुत पराक्रम केवल आप ही कर सकते हैं।
गौतम पाठक जी, रेहान साहब तक ये जो आपका सुझाव है ये बिल्कुल हम पहुंचा दे रहे हैं, और ये बिल्कुल सही बात है कि जो विवेचना का विषय होता है उसमें ज़्यादातर इतिहास की बातें होती हैं, लेकिन आप भविष्य देखना चाहते हैं तो भविष्य में क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या संभावनाएं हैं और आगे हमारा भविष्य किस तरह से आकार लेगा, आप ये सुनना चाहते हैं। बिल्कुल आपका जो सुझाव है वो हम आप चाहते हैं कि रेहान साहब तक पहुँचा दिया जाए और इस सुझाव को विधिवत हम रेहान फजल तक पहुँचा देंगे। अगली चिट्ठी
हमारी जो रेगुलर श्रोता है जंग बहादुर सिंह गोलपहाड़ी से कहते हैं कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चुनाव के लिए, क्योंकि इसकी वजह से बीबीसी सिंहला सेवा के एडिटर और हिंदी सेवा के भूतपूर्व रेडियो संपादक श्री राजेश जोशी जी की आवाज हमें सुनने को मिली। एक अरसा बाद उन्हें सुनकर बहुत अच्छा लगा।
और ये श्रीलंका के चुनावों की बात कर रहे हैं
जी। कहते हैं कि भाई उनसे लगातार संपर्क बनाए रखिएगा, केवल श्रीलंका के मामलों में ही नहीं, इंग्लैंड में भी अगर कुछ घटना घट जाए तो उसकी भी जानकारी राजेश जोशी जी से ले लीजिएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसा कर भी रहे हैं और ऐसा हम करते भी रहेंगे, ये हम आपको यकीन दिलाना
चाहते हैं। ये जंग बहादुर सिंह का सुझाव था?
नहीं, ये जंग बहादुर सिंह जी कह रहे हैं कि राजेश जोशी की आवाज़ सुनी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो इस समय सिंघला सेवा को देख रहे हैं, उसके संपादक हैं, तो बार बार वो कह रहे हैं कि भाई आप उनका भी अपने कार्यक्रम यानी कि हिंदी सेवा में इस्तेमाल करते रहिएगा, हमें उनकी आवाज़ सुनने को मिल जाएगी और समसामयिक विषय की जानकारी तो मिलती ही है।
और अब कार्यक्रम समाप्त होने का समय आ गया है, दीजिए इजाज़त।
नमस्कार।
तो आज आपकी चिट्ठियां लेकर आए थे मोहनलाल शर्मा और इंदु पांडे, और अब समय है खेल समाचारों का। राखी स्टूडियो में आ चुकी है। राखी, क्या खास है आज स्पोर्ट्स में?
जी, सबसे पहले तो एशेज सीरीज़ का जिक्र कर देते हैं, क्योंकि आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। आपको बता दें कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी कर रहा है और 174 रन उन्होंने जोड़ लिए हैं, 2 विकेट का नुकसान उन्हें हो चुका है, 50वां ओवर का खेल चल रहा है और इस वक्त कप्तान माइकल क्लार्क 7 रन बनाकर और स्टीवन स्मिथ 26 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। जो आउट होने वाले 2 बल्लेबाज रहे उसमें क्रिस रोजर्स जिन्होंने 43 रन का योगदान दिया और डेविड वार्नर 85 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से उसके तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। इंग्लैंड की टीम 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से विजयी बढ़त हासिल कर चुकी है और इसके साथ ही इंग्लैंड ने किसी भी घरेलू एशेज सीरीज में 4 टेस्ट नहीं जीते हैं, लेकिन अब वो इसके बेहद करीब हैं।
और वहीं राखी, भारत और श्रीलंका में भी टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इस टेस्ट सीरीज में जो है दूसरा मैच चल रहा है अभी और पहला मैच भारत हार गई थी, तो अब आज कैसा प्रदर्शन रहा?
जी हाँ, बिल्कुल, कोलंबो टेस्ट का आज पहला दिन का खेल रहा और कह सकते हैं कि पहला दिन भारत के नाम रहा। पहले दिन आज भारत ने 319 रन जोड़े, हालांकि उसके 6 बल्लेबाज भी पवेलियन लौट चुके हैं। कोलंबो टेस्ट के पहले दिन की जो शुरुआत है वो अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे श्रीलंकाई खिलाड़ी कुमार संगकारा के गार्ड ऑफ ऑनर से हुई। बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने उन्हें एक मोमेंटो भी भेंट किया। अगर मैच की बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को चुना था, लेकिन खराब शुरुआत रही। इस टीम की चोटिल खिलाड़ी शिखर धवन की जगह टीम में शामिल हुए मुरली विजय अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद नंबर 3 पर आए अजिंक्य रहाणे भी 4 रन पर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद भारतीय पारी थोड़ी सी संभली और 3rd विकेट के लिए कप्तान विराट कोहली और केएल राहुल के बीच 164 रन की साझेदारी हुई। 23 साल के राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना दूसरा शतक लगाते हुए 108 रन जोड़े। वहीं विराट कोहली 78 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 4th विकेट के लिए भारत ने 55 रन जोड़े। भारत टीम का जो 5वां विकेट था वो 10 रन बनाकर स्टुअर्ट बिन्नी के रूप में गिरा और 6ठा विकेट 79 रन बनाने वाले रोहित शर्मा के रूप में गिरा। आज के दिन जो नॉट आउट रहे बल्लेबाज वो थे रिद्धिमान साहा, जो इस वक्त 19 रन बनाकर मौजूद हैं क्रीज पर।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद खेल समाचारों के लिए राखी आपका। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत और पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकारों की 23 और 24 अगस्त को दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले भारत प्रशासित कश्मीर में हुर्रियत नेताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर ज्यादातर को रिहा कर दिया गया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के इरावन मंदिर के पास हुए धमाके के मामले में पुलिस के पास पहुंचे दो लोगों ने कहा कि इन्हें गलत तरीके से संदिग्धों की तरह पहचाना गया। ये दोनों टूर गाइड बता रहे हैं। स्लोवाकिया में एक एयर शो का अभ्यास कर रहे दो परिवहन विमान हवा में टकरा गए, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई। विमान के पायलट और क्रू के सदस्यों की भी मौत हो गई। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि अफगान सीमा के पास 43 संदिग्ध चरमपंथियों को मार गिराया गया है। उत्तरी वजीरिस्तान में एक साल से चल रहे सैन्य अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ दिन भर में आज बस इतना ही। तकनीकी सहयोगी राजेश चौहान के साथ 9:30 बजे तक मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।